सुबह हवेली में हमेशा की तरह शांति नहीं थी। आज आंगन की हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था, जैसे दीवारें भी जानती हों कि कुछ होने वाला है। रत्ना देवी अपनी ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठी थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखें हर चेहरे को बारीकी से परख रही थीं। उनके सामने गगन खड़ा था, सीधा, चुप, लेकिन भीतर से घबराया हुआ। आंगन में लगभग पूरा परिवार मौजूद था। शकुंतला, सुषमा देवी, अदिति, थोड़ी दूरी पर रम्या और सबसे पीछे खड़ी श्यामली। विशाल भी वहीं था, लेकिन पूरी तरह चुप। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, फिर रत्ना देवी ने सीधे गगन से पूछा, सच सच बताओ बेटा, तुम यहां किस लिए आए थे? गगन ने एक पल के लिए नजर उठाई, उसकी आंखें रम्या से टकराई। रम्या के चेहरे पर उम्मीद भी थी और डर भी। रत्ना देवी ने अगला सवाल साफ शब्दों में रखा, क्या तुम रम्या को पसंद करते हो? पूरा आंगन जैसे ठहर गया। रम्या की उंगलियां आपस में कस गईं। श्यामली ने गहरी सांस ली। शकुंतला की नज़र गगन पर टिक गई। रत्ना देवी ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में पूछा, और क्या तुम उसी के लिए रात को उसके कमरे में गए थे? कुछ सेकंड, बहुत भारी। गगन के होंठ हिले, नहीं। जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। रम्या का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। मैं रम्या के लिए नहीं आया था। अब सबकी नज़रें और तेज़ हो गईं। रत्ना देवी ने बिना भाव बदले पूछा, तो फिर? गगन ने गला साफ किया, मुझे वहां जाने को कहा गया था। आंगन में हलचल हुई। किसने? रत्ना देवी ने पूछा। गगन ने नज़र घुमाई और फिर कहा, श्यामली जी ने। जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। क्या? रम्या की आवाज़ टूट गई। गगन, ये क्या बोल रहे हो तुम? श्यामली भी आगे बढ़ी, ये झूठ है। उनकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। गगन ने तुरंत कहा, आपने ही कहा था कि रम्या के साथ करीबी बढ़ाने के लिए। नहीं तो इससे पहले तो हम सिर्फ दोस्त थे, घर के बाहर ही कभी मिलकर बात कर लिया करते थे। रम्या हक्का बक्का रह गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो खुद, तुमने कहा था। वो रुक गई। अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। श्यामली ने आगे बढ़कर कहा, मां जी, ये सरासर झूठ है, मैंने इसे कभी नहीं बुलाया। मैं तो खुद उस रात सब सुनकर हैरान रह गई थी। सुषमा देवी तुरंत बोली, तो ये लड़का खुद क्यों फंसेगा? अपनी इज्जत दांव पर लगाकर झूठ क्यों बोलेगा? अदिति चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक थी। रत्ना देवी ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया, फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है, तुम जाओ अभी। गगन ने राहत की सांस ली। वो मुड़ा ही था कि अचानक, रुको। आर्यन आगे आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ये झूठ बोल रहा है। उसने सीधे गगन का कॉलर पकड़ लिया। मैं श्यामली को जानता हूं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। गगन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, छोड़िए मुझे। लेकिन आर्यन का गुस्सा फट चुका था। तुम जैसे लोग अपनी गलती छुपाने के लिए किसी पर भी इल्जाम लगा देते हो। और अगले ही पल धड़ाक, उसने गगन को धक्का दिया। गगन लड़खड़ा गया। आर्यन, शकुंतला चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। आर्यन ने उसका कॉलर फिर पकड़ा, सच बोलो। मैं सच ही बोल रहा हूँ, झूठ। और उसने उसे मुक्का मार दिया। आंगन में अफरा तफरी मच गई। रम्या चीख उठी, बस करो। श्यामली आगे बढ़ी, आर्यन छोड़ दो। लेकिन आर्यन रुक नहीं रहा था। उसके भीतर सिर्फ गुस्सा नहीं था, भरोसे का टूटना था। तुम श्यामली का नाम लोगे? वो फिर वार करने ही वाला था कि बस, रत्ना देवी की आवाज गूंजी, इतनी ठंडी कि सब जम गए। आर्यन पीछे हटो, उनका स्वर आदेश था। आर्यन ने कुछ पल तक गगन को पकड़े रखा, फिर धीरे धीरे हाथ छोड़ दिया। गगन पीछे हट गया, सांस तेज थी, चेहरा तना हुआ। रत्ना देवी ने सबको देखा और कहा, यहां कोई हाथ नहीं उठाएगा। आंगन में फिर सन्नाटा उतर आया। अब सबकी नजरें श्यामली पर थीं। और श्यामली पहली बार खुद को सचमुच कटघरे में खड़ा महसूस कर रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन हवेली के भीतर अब भरोसे की जमीन दरक चुकी थी। गगन के जाते ही जैसे आंगन की हवा और भारी हो गई। उसकी पीठ ओझल होते ही रम्या अचानक आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक बेचैन सच्चाई थी। नानी, पता नहीं वो झूठ क्यों बोल रहा है, मामी जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। उसने उम्मीद से सबकी ओर देखा, जैसे कोई तो उसकी बात सुनेगा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, ना शकुंतला, ना विशाल, ना अदिति, यहां तक कि रत्ना देवी भी चुप रहीं। उसकी आवाज जैसे हवा में ही गिर गई। रत्ना देवी ने सिर्फ इतना कहा, रम्या अपने कमरे में जाओ। लेकिन नानी, अभी, स्वर कठोर था। रम्या की आंखें भर आईं। उसने एक बार श्यामली की ओर देखा, फिर धीरे धीरे मुड़कर चली गई। उसके जाते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। और तभी, ये सब गलत है, आर्यन भड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्सा और चोट दोनों थे। शामली ऐसा नहीं कर सकती, आप लोग उसे कैसे गलत समझ सकते हैं। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मैं उसे जानता हूं, सुषमा देवी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम जानते हो, हम भी तो देख रहे हैं उसे। आर्यन ने पलट कर देखा। मतलब? सुषमा देवी की आवाज अब साफ थी। मतलब ये कि शामली मुझे हमेशा से गलत लगी है। आंगन में फिर हलचल हुई। शामली जैसे पत्थर बन गई। रत्ना देवी ने अब पहली बार उनकी ओर सीधी नजर से देखा। कुछ सेकंड, भारी। फिर उन्होंने कहा, शामली तुम कुछ दिन के लिए इस घर से बाहर चली जाओ, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। आर्यन वहीं ठिठक गया। क्या? उसकी आवाज टूट गई। दादी, आप उसे निकाल रही हैं? रत्ना देवी का चेहरा निर्विकार था। घर की इज्जत सबसे पहले आती है। आर्यन एक कदम पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे अंदर से हिला दिया हो। उसकी नजर शामली पर गई, फिर रत्ना देवी पर, फिर पूरे आंगन पर। कोई उसकी तरफ नहीं था। हवा चल रही थी, लेकिन उस पल समय रुक गया था। और पहली बार आर्यन को लगा, इस घर में सच से ज्यादा शक की कीमत है।